चलिए अगला अमल देखिएगा, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ना। इससे मुराद क्या जमात है, हदीस पढ़ लीजिए फिर इस पे बात करते हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने हमें जाबिया, एक मुकाम है दमश्क की एक बस्ती का, उसमें जाकर खुतबा दिया और फरमाया, लोगों मैं तुम में इस तरह खड़ा हुआ हूँ जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में खड़े हुए थे। और फरमाया, यानी ये भी सहाबा की खूबी होती थी कि जो काम उनके साथ नबी सल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया होता था ये अपने बाद वालों के साथ वही काम करते थे, यानी उस्तादों के नक्शे कदम पे शागिर्द चलते हैं, ये मुराद है। क्या फरमाए, उसी कुम बी असहाबी थुम अल्लज़ीन यलूनहुम थुम अल्लज़ीन यलूनहुम थुम यफशुल कज़िबू हत्ता यहलिफ़ अर्रजुलु वला युस्तखलफु व यशहद अश्शाहिदु वला युस्तशहदु अला ला यखलुवन रजुलुन बिमरातिन इल्ला काना सालिसहुम अश्शैतानु अलैकुम बिलजमात व इय्याकुम वलफुरक़ता فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بخبوخة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن। मैं तुम्हें अपने सहाबा के साथ अच्छे बर्ताव की वसीयत करता हूँ, फिर इनके साथ जो इनके बाद आएँ यानी ताबईन, फिर इसके बाद जो इनके बाद आएँ यानी तबा ताबईन, फिर झूठ फैल जाएगा हत्ता कि आदमी हल्फ उठा लेगा मगर इससे हल्फ तलब ना किया गया होगा, यानी बात बे बात कस्में खाएगा, प्लेज करेगा, बैत करेगा, वादे देगा, यानी हल्फ से मुराद कोई भी हल्फिया बयान है। और आदमी गवाही देगा मगर इससे गवाही तलब ना की गई होगी, खबरदार कोई आदमी किसी अजनबी औरत के साथ हरगिज़ तन्हाई इख्तियार ना करे वरना इनका तीसरा साथी शैतान होगा। जमात को लाजिम पकड़ लो और अलहदगी से बचो क्योंकि अकेले के साथ शैतान होता है। मुराद ये कि मुसलमानों की जमात को छोड़ देने वाले के साथ शैतान होता है और वो दो आदमियों से दूर होता है। जो शख्स जन्नत के बेहतरीन मुकाम पर रिहाइश चाहता हो वो जमात को लाजिम पकड़े, और जिसे इसकी नेकी अच्छी लगे जब वो करे और इसकी बुराई गमगीन करे तो तुम में वही मोमिन है। सही रिवायत है तिर्मिज़ी में 2165 और सिलसिला तो सहीहा में 430। इसे क्या पता है। देखिए मुसलमानों की जमात से मुराद ऐसी जमात जो तमाम मुसलमानों पर मुश्तमिल हो और इनका अमीर और हुक्मरान एक हो, जिसकी इताअत सब मुसलमानों पर वाजिब हो। ऐसी जमात और ऐसा अमीर आज के दौरे हाजिर में बिल्कुल मफकूद है। बहुत सारे लोगों ने इस एक हदीस को अपने मसलक और अपने फ़िरके और अपने गिरोह और अपनी जमात से लोगों को बांधने के लिए मिस यूज़ किया। कई लोग गिल्ट के मारे हुए पास आते हैं और सवाल करते हैं, हमने तो फलां फॉर्म फिल कर दिया, आप अगर वहाँ से हटे। और वो अगली हदीस भी पेश करते हैं कि जो जमात से हटा वो जाहिलियत की मौत मरा, जिसने जमात का फंदा गले से उतार दिया। तो देखिए असल में तो इसमें इज्तमाइयत है। बस आप देखिए अभी चंद दिन पहले ईद थी, चांद नज़र आया कि नहीं आया, कल ईद होगी या रोज़ा होगा, इसको मिसाल ले लीजिए। अब आप सब तो एक मुस्लिम मुल्क में बैठे हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड कर दी, चांद दिख गया उनकी गवाही है, आपका मेरा काम है कि ईद कर ले। एक शख्स काबले एतबार मोतबर शख्स गवाही दे दे और हुकूमत वक्त उसकी बुनियाद पर डिक्लेयर कर दे, अब आपको शक में नहीं पड़ना। और कोई के नहीं मैं तो खुद चांद देखूंगा तो फिर देखूंगा, और मुझे तो डाउट है, और इन्होंने एक रोज़ा खा लिया और पी लिया, ये चीज़ें जमीयत को तोड़ती हैं। हमेशा कम्युनिटी में रहें, सोशल में रहें, अपने एक दूसरे को बांध के रखें। अब इसी साल एक और फजूल किस्म का मैसेज सब तरफ भागा जा रहा है और वो कह के जी सऊदी हुकूमत ने गलत चांद देखा, और आप देखें आपके पास भी पहुँचे होंगे ऐसे मैसेजेस, कई साल पुराना वो मैसेज आज का नहीं है पहली बात है, और उसको पेश करके सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करें। वो मैसेज उर्दू में है, इंग्लिश में है, कहीं आज तक अरबिक में नहीं है, तो ये फैब्रिकेटेड मैसेजेस होते हैं। आज एक पूरा माफिया है याद रखिए जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ लोगों को कर रहा है ताकि मुसलमानों का दीन मशकूक हो, और सऊदी अरब से कटेंगे तो मक्का मदीना से तो कट ही गए और दीन तो खुद ही कटा हुआ। ऐसा कोई अनयूजुअल मैसेज आए फ़ौरन डिलीट कर दें, खुद भी ना पढ़ें। अपना दिमाग सीधा रखें। फिर दूसरी बात देखिए कि मिसाल है, इसको दीन के काम में देखिएगा। काम अकेले नहीं होते, मतलब इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं, मुख्तलिफ लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। किसी ने ये जगह बनाई, कोई यहाँ सफाई करता है, कोई पढ़ा रहा है, कोई आपके बच्चों को देख रहा है, आपको पुरसकून तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। आप दीन की खिदमत करना चाहते हैं, आप यहाँ आइए, ऑफ़र कीजिए कि भाई मैंने ये काम करना है, मुझे ये आता है, मुझे तजवीद आती है, मेरी हदीस अच्छी, मेरी ग्रामर अच्छी है, मिल के काम कीजिए। आप कहते नहीं नहीं इधर नहीं, यहाँ तो फिर मुझे रूल्स मानने पड़ेंगे, इदारा है, इंस्टीट्यूट है, फिर ये तो मुझसे रिपोर्ट लेंगे, मैं अब ये दो घर छोड़ कर अपने घर में एक क्लास शुरू कर देती हूँ, ये अच्छा अमल नहीं है। आज इस चीज़ ने कितने इल्म वालों को, यकीन कीजिए, बहुत बड़ी बड़ी नेकियों से महरूम किया हुआ है, और लोग बेचारे परेशान हैं। दे क्वालिटी आप नहीं रहे, आप सोने जैसा पढ़ा लें। जैसे मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं जितना भी अच्छे से अच्छा पढ़ा लूँ, लेकिन मेरे साथ सब लोग हेल्प करने वाले ना हों, तो मेरे वो पढ़ाने से इतना फ़ायदा नहीं होगा। दीन का काम भी इज्तमाईयत में करें। आपको अगर एक प्लेटफॉर्म ऑफ़र किया जाता है, आपके पास करीब कोई अच्छी जगह मौजूद है जिससे आप मिलकर अपने उस कोशिशों को दे दें, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है अकेले करने से। लोग 10 10 साल एक क्लास करते रहते हैं घर में, और कुरान कभी पूरा ही नहीं हुआ। जिनके साथ शुरू किया था, तकमील पे वो नानियाँ बन चुकी होती हैं, जो शुरू करते हैं वो फौत हो चुके होते हैं, जिन्होंने बीच में शुरू किया वो बालिग हो रहे हैं। ये दीन का मिजाज नहीं है। दीन को एक स्केड्यूल के साथ, स्ट्रक्चर्ड काम के साथ करेंगे तो फिर फायदा होगा। आप देखिए दुनिया में हर जगह ऐसी है, आपका किसान बीज कब डालता है? जब दिल चाहता है, जहाँ जाके डालाता है। हर बीज का एक मौका है, फसल लगती है। चावल जिस मौसम में लगते हैं उसमें आप गंदम के बीज डाल आइए, नहीं लगेंगे। पानी देना नहीं था, दे आए, बीज नहीं लगेगा। बीज लगे में ऊपर जाकर आप में से कोई हल चला दे, सब खत्म हो जाएगा। हर काम सिस्टम के साथ। आज जब हम दूसरी चीज़ों में डिसऑर्गनाइज हुए, तो हम दीन के कामों में भी डिसऑर्गनाइज हैं। कर हम अपने जोम में नेकी कर रहे हैं काम, अल्लाह जानते नीयतों पर अल्लाह अजर भी कल दे देगा, दुनिया में पौधा नहीं लगेगा। तरतीब को मलहूज रखिए, लोगों का वक्त ना ज़ाया कीजिए। और मैं लोगों से भी कहूँगी, हम तो हर चीज़ में क्वालिटी मांगते हैं। कपड़ा देख लीजिए, जूता देख लीजिए, खाना देख लीजिए, आला से आला। तो दीन में हम कहते हैं नहीं ये करीब है ना, इधर से ही ले लेते हैं, चलो जो भी आता है। हाँ आयतें तो सही नहीं पढ़ती, तजवीद तो अच्छी नहीं, चलो बस सादा सादा पढ़ा रही। भाई आप थोड़ी सी मेहनत करके ज़्यादा अच्छा पढ़ लीजिए। आप में से कोई भी नहीं कहता कि जो सादा सा कपड़ा है वही पहन लेती हूँ। आप तो कहाँ जाकर लेते हैं, लोग खाना खाने लाहौर चले जाएंगे। तो दीन लेने के लिए हम सफ़र नहीं कर सकते क्या? ये दीन इतना कमज़ोर दीन है? तो हमेशा क्वालिटी को सामने रखिए, थोड़ी सी कोशिश ज़्यादा कर लें, लेकिन बेहतरीन चीज़ लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में इसकी खैर आए। फिर आगे देखिए, हुक्मरान का अदल करना, हर मुसलमान के लिए नरम दिल होना और सवाल से बचना। हज़रत अय्यास बिन हमार मुजाशई रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने एक रोज़ अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, अहलुल जन्नति सलासतुन। और कोशिश किया करें कि अरबी सुनते ही अपने जहन में कुछ तसव्वुर कायम कर लें। कौन से तीन लोग हैं जो जन्नती होंगे? जू सुल्तानिन मुक्सितुन, मुतसद्दिकुन, मुवफ़क़ुन व रजुलुन रकीकुल कल्बी, लिकुल्ली ज़ी क़ुरबा व मुस्लिमिन व अफीफ़ुन मुतअफ़िफ़ुन ज़ू एयाल। जन्नत में दाखिल होने वाले लोग तीन तरह के हैं, एक हुक्मरान जो इंसाफ करने वाला, सच बोलने वाला और जिसे नेक कामों की तौफीक दी गई हो, ऐसा शख्स जो हर कराबदार और हर मुसलमान के लिए मेहरबान और नरम दिल है, पाक दामन और फ़क्र और फाके के बावजूद सवाल से बचने वाला। ये मुस्लिम की रिवायत 2865 है। क्या सीखा आपने कि क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साए के सिवा। सोचें इस वक्त ये छत ना होती, खुले मैदान में धूप में बैठे होते हैं तो कितनी गर्मी लगती, कितनी नेमतों में बैठे हैं अल्लाह की। बाहर आग बरस रही हो आपके घर में, चाहे आप कंबल ले लीजिए, इतना एसी तेज़ कर लें। क्या क़यामत के दिन आपको मुझे ठंडक की ज़रूरत नहीं है, साय की ज़रूरत नहीं है? और सात लोगों को अल्लाह उस दिन अपने अर्श के साय में जगह दे, और उसमें एक आदिल हुक्मरान है। ये बुखारी की रिवायत 660 है और मुस्लिम 1031। तो अदल बहुत बड़ी चीज़ है। फिर इसी तरह एक हदीस में आता है कि फ़ैसला करने में और अपने घर वालों में और अपने मातहत लोगों में अदल व इंसाफ करने वाला روزے قیامت اللہ کے پاس نور کے ممبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے. اب یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, اللہ کو پتہ, لیکن ہوگا بہت پروٹوکول. مسلم کی روایت ہے یہ 1827 کتاب الامارہ میں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو اس حدیث میں تھی وہ تھی نرمی. نرمی اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ کا اپنا ایک نام ہے, کیا بھلا, رؤوف اور رحیم, اور بھی ایک ڈھونڈ کے آئیے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اللہ کے ناموں میں نرمی کا عنصر موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور سارے معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے. بخاری کی روایت 6026 اور مسلم 2165. نرمی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ ایسی ایسی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں جو سختی سے کبھی بھی نہیں عطا فرماتے. دیکھیے بندہ سخت کیوں ہوتا ہے, آواز کب اونچی ہوتی ہے آپ کی, جب آپ اپنے بچوں سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں. جلدی کرو, ماسی کو ڈانٹتے کیوں ہیں, کام کریں نا. آپ آواز اونچی کر کے سختی کے ساتھ کام لینا چاہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں وہ نرمی سے ملنا ہے. نرم ہاتھوں سے آپریشن ہوتے ہیں, سخت ہاتھوں سے تو آپ دیکھیں زخموں کو بگاڑ دیں گے آپ. تو ہمیشہ نرمی کی بات کیجئے, نرمی آ گئی سب کچھ آ جائے گا. فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے, یعنی خوبصورت کر دیتی ہے, بیوٹیفائی کر دیتی ہے, اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے خراب کر دیتی ہے. مسلم کی روایت ہے 2594 ہے. ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا, پیشاب شروع کر دیا, صحابہ جھڑکنے لگے, بھگانے لگے, تو اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کو روک دیا. جب وہ اپنا کام کر چکا تو صحابہ کو کہا بر اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو, اور فرمایا بلا شبہ تمہیں آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا, تنگی کرنے والا بنا کر نہیں. یہ بخاری کی روایت 220. اب آپ ذرا سا نوٹ کریں, ہم تو فوراً پیچھے نہ پڑ دیں. آپ دیکھیں کوئی عورت ادھر آئے اور اس کا بچہ یہاں پیشاب کر دے, ہم کیا کریں گے, ایک دم جوش شروع کر دیں گے, پریشان کر دیں گے اس کو, نہیں. پیار سے, محبت سے, نرمی سے بات کریں, آپ دیکھیں گے کہ اگلے کو خود بخود اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایسے لوگ جو فقر اور فاقے کے باوجود دوسروں سے سوال نہیں کرتے, یقیناً عظیم درجات کے مالک ہیں, اور یہی لوگ زکوٰۃ اور صدقات کے بھی مستحق ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے, جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے. نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے ان کو مالدار خیال کرتے ہیں, یعنی چونکہ یہ سوال نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں یہ امیر ہی ہوں گے, ان کے پاس بڑے پیسے ہیں. آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر نشانی یعنی قیافے سے ان کو پہچان لیں گے, وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. سورۃ بقرہ کی روایت ہے یہ 273. انسان اگر صبر و تحمل سے کام لے اور سوال سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بھی بچا لیتے ہیں اور اس کی ضروریات بھی پوری کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ بلا ضرورت ہی مانگتے پھرتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزے قیامت اس حال میں ان کو اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہروں پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. بخاری کی روایت ہے 1484 اور مسلم 1040. اسی طرح صحیح ترغیب 797 میں آتا ہے کہ سوال کرنے والے کو اگر علم ہو جائے کہ اس میں اس کے لیے کیا ذلت اور رسوائی اور گناہ ہے تو کبھی سوال نہ کریں. کیا یہ حدیثیں ہم بیگرز کے اندر عام نہیں کر سکتے؟ چھوٹے چھوٹے اس کے پمفلٹ چھپوائیے, سٹیکر چھپوائیے, اور رات جاتے فقیروں کو دے دیجئے, اور انہیں کہیں کسی پڑھے لکھے سے پڑھوا لینا, وہ سوچے گا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی ذلت ہے بندے کی جب وہ کسی کے آگے ہاتھ کھڑا کرے اور اس کے بعد اس کو نہ وہ چیز ملے اور عزت بھی اس کی چلی جائے. اسی لیے حت الوسع سوال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے 1469 اور مسلم 1053. اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں, کسی سے بھی نہ مانگیں, بیویاں شوہروں سے نہ مانگیں, بچے ماں باپ سے خرچہ نہ مانگیں, تو یہ مراد نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ پروفیشنل بیگرز ہونا اور عادت ہی بنا لی مانگنے کی, مثلا دین کے کام کے لیے نہیں مانگنا چاہیے, یہ بھی ایک سوال کر لیں. دیکھیے دین کا کام جب بھی کہیں ہوگا, یہ پہلی تو بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہوگا, उसके सारे खर्चे, उसके सारे इंतजामात अल्लाह ही चलाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई काम होता है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की होती है। दीन वालों को क्या चाहिए? अपने हर प्रोजेक्ट, हर मंसूबे की खबर दूसरों को दें। एक दूसरे ये पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रोइंग। देखिए ना, इस स्कूल में कोई आए ही ना तो हलचल ही कोई नहीं होगी, ना दरवाज़ा खुलेगा, ना बिजली जलेगी, ना आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ रोज़ क्लासेस हों, सुबह भी हों, शाम में भी हों, वीक डेज़ में भी हों, वीकेंड पे भी हों, तो ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे ना, ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी ना। तो अगर आप किसी को इस बात से बाखबर करते हैं कि हमारा ये एक नया प्रोजेक्ट है, उसमें ये होगा और अल्लाह की रहमत है, बस अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी कोई खैर डाल सकती है, डाल दीजिए, नहीं है तो दुआ कर दें। यानी भीख मांगने का अंदाज़ नहीं होना चाहिए, बाखबर करने का अंदाज़ होना चाहिए। और जिनको नहीं देना वो ना दें, उनको माइंड भी नहीं करना चाहिए, कोई किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं करेगा। लेकिन दीन के काम अकेले नहीं, हम खुद ही कर लेंगे। बस अब हम इधर बैठे, हम कहते हैं हम जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, अब हम तो एक लिमिट तक करेंगे। और अगर चार छः बड़े लोग हों, और कोई भी शहर इतना गरीब नहीं होता कि वहाँ कोई भी पैसे वाला ना हो, कई जगह ऐसी हैं यकीन करें, हज़ारों के मजमे, उसी में से लोग उठ जाते हैं, हाँ इतने लोग आते हैं गर्मी, आप एसी लगवा लें हम पैसे देंगे, आप इनके लिए खाना मंगवा लें हम पैसे, हम स्पॉन्सर करते हैं। क्या हम दुनिया के लिए लगाते हैं, दीन पे नहीं लगता? खाना तो लोग खाते ही हैं, लेकिन जब दीन की जगह से खाना मिलेगा तो लोगों को दीन अच्छा लगेगा। पीते तो हैं घरों में भी, लेकिन जब दीन के नाम पे पियेंगे तो अजर मिलेगा। तो ये सारी बातें, खबर देना, इससे मुराद है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए ताकि दीन वन मैन शो ना बन जाए। कुछ लोग कहते हैं हम खुद ही करेंगे, और वो फिर कच्चा पक्का करते हैं, अधूरा पधूरा कोई पूछे कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो आपको रिसोर्सेज अपने तक रखने की ज़रूरत नहीं, ये किसी इंसान के हाथ में तो कोई नहीं देता ना। तो लेकिन बिला वजह आदत ही बना लेना, हम आपको जाने ही नहीं देंगे जब तक चंदे में कुछ ना डालें, और सफ़ों में चंदा बॉक्स फिराया जाए और खड़े हो जाए, कुछ तो दें फिर हम दुआ कराएंगे, ये दुरुस्त तरीका नहीं। शर्मिंदा ना करें अगले को, हर वक्त हर बंदा तैयार नहीं होता। और मेरा तो ईमान है इस बात पे, आप लोगों के अंदर खैर उभारें। हर बंदे को अपना नफ़ा नुकसान पता है, हर बंदे को पता है कि मेरा फ़ायदा किस में है। और आप याद रखें कि चलती गाड़ी में हर एक बैठना चाहता है। आप अच्छा काम कीजिए, लोग खुद ब खुद आपके काम के मुआविन बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से नूरुल कुरान बहुत ही खुश नसीब है, ये अल्लाह की रहमत है। पिछले 5-6 साल से ख़ास तौर पर हर शहर, हर मुल्क में हर वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जब प्रोजेक्ट चलता है तो नए काम, नई जगह, नए इदारे, नए इलाके। अब अगर ये खबर लोगों तक जाती है कि अब ये प्रोजेक्ट है, आजकल अलबरका प्रोजेक्ट चल रहा है और ज़ादुल खैर है और इसमें फस्तबिकुल खैरात है, तो लोगों को इसको सुनकर दुआ देनी चाहिए, खुश होना चाहिए। कोई डाल सकता है इसे डाल दे, उसकी मर्ज़ी, नहीं डाल सकता तो कोई बुरी बात भी नहीं है, किसी की इज्जत नफ्स पे हाथ तो नहीं पड़ता ना। लेकिन ये सोच लेना कि हर वक्त जैसी, तो ये कोई चंदे की अपीलें नहीं होती, ये तो बल्कि अपनों को शामिल करना होता है खुशियों के नाम पे। तो बहरहाल ये है कि प्रोफेशनल बनकर हर वक्त मांगते रह जाना, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। हया का दामन ना छोड़ना, आज के दौर में इस टॉपिक को पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल हयाउ मिनल ईमानी वल ईमानु फिल जन्नती वल बजाओ मिनल जफाई वल जफाओ फिन्नार। हया ईमान में से है और ईमान वाले ही जन्नत में होंगे, और बद अखलाकी जुल्म से है और जुल्म वाले दोजख में होंगे। सही तिरमिज़ी 2009 और सिलसिला सहीहा 495 और इब्ने माजा 4184। कितना दो टोक अल्लाह के नबी का इसमें अंदाज़ है। सीधी सी बात है, हया है तो जन्नत है, हया नहीं है तो बस पीछे हो जाओ। तो क्या करना है आपने, मैंने हया को बढ़ाना है। हया क्या होती है? देखिए, हयात जिंदगी दोनों का एक ही रूट है, यानी हया में हयात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हया सिर्फ खैर का बायस बनती है, और एक हदीस में आता है कि हया सारी की सारी खैर है, बुखारी की रिवायत 6117 और मुस्लिम 37। इसी तरह बुखारी 24 और मुस्लिम 36 में एक रिवायत आती है कि एक मरतबा नबी सल्लम अनसार के एक आदमी के पास से गुज़रे, جو اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا، مراد یہ تھا کہ تو تو ہر وقت شرماتا ہی رہتا ہے، اتنی بھی حیا اچھی نہیں. ہمارے کلچر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، بعض لوگ مردوں کا حیا کرنا ان کی کمزوری یا ویکنس سمجھتے ہیں، اور حیا کے لفظ کے ساتھ عورتیں اور عورتوں میں بھی خاص طور پہ فلمی ہیروئنوں کی وہ بیکار قسم کی اٹکلیاں کہ جس پہ وہ منہ میں دوپٹہ ڈالے گھومتی پھرتی بیوقوفوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتی ہیں، یہ تصور دیتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے، یہ حیا تو فلموں سے سیکھی جائے گی، اصل حیا ایسی نہیں ہوتی. حیا اب ایک شخص آدمی کو کہہ رہا ہے کہ آپ حیا اتنا نہ کریں، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، تو آپ نے فرمائی سے اس کے حال پہ چھوڑ دو. یقیناً حیا تو ایمان کا حصہ ہے، یعنی مین کہ منع نہ کرو اس کو. تو ہمارے ہاں لڑکوں کو بعض دفعہ بے حیا بنایا جاتا ہے. کچھ کلچر تو ایسے ہیں کہ بچہ پہلی گالی دے تو اس کے ماں باپ کو مبارک دی جاتی ہے. پھر اسی طرح صحیح بخاری روایت 9 نمبر، مسلم 35 اور ابو داؤد 4676 میں ہے، آپ نے فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. راوی کو شک ہے کہ 60 سے اوپر تھی یا 70 سے تھی. اب سب سے اوپر کیا ہے افضل؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے ادنا کیا ہے؟ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیجئے. اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. تو حیا ایمان کا حصہ کیسے ہے؟ ایمان پورا ہی نہیں ہوتا حیا کے بغیر. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ احادیث جس میں مداح اور ستائش بیان کی گئی، اس سے مراد ایسی حیا ہے جو انسان کو گناہ چھوڑنے پہ ابھارے. شیطان اس سے جب بھی کوئی برا کام کرانے لگے تو اسے حیا آ جائے اور وہ اس کام سے رک جائے. اس سے ایسی حیا ہرگز مراد نہیں جو انسان کو نیکی کے کام سے روک دے. یعنی بعض لوگوں سے کہ شیئرنگ کرے کہتے شرم آتی ہے، سبق سنائے شرم آتی ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں میمانی لا یتعلمانی، دو میم ایسے ہیں جو کبھی علم نہیں حاصل کرتے. اور اس میں ایک کیا ہے؟ المتکبر، تکبر کرنے والا، جو کہتا ہے مجھے تو پہلے ہی بڑا آتا. اور دوسرا کیا ہے؟ المستحی، حیا کرنے والا، جھجک کی وجہ سے سوال نہیں پوچھتا کہ نہیں پوچھا تو پتہ نہیں کیا کہہ دوں گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مثلا کسی سے کہا جائے کہ تلاوت کرو تو حیا کرے اور تلاوت نہ کر سکے. کسی سے کہا جائے کوئی تھوڑی سی اچھی بات سنا دیں، آواز کر دیں، کچھ درس دے دیں تو کہ نہیں مجھے شرم آتی ہے، میں لوگوں میں بات نہیں کر سکتا. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے جو امور دینیہ ہیں یا احکام شرعی ہیں، اس میں آپ دیکھیے باتھ روم میں جانے کے مسائل، وضو، طہارت، غسل، نجی زندگی، شوہر بیوی کی زندگی. اب اس کو بیان کرتے وقت کہ جی نہیں ہمیں شرم آتی ہے، تو اس کی شرم جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اللہ کے نبی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج نے ایسے سارے نجی معاملات امت کے سامنے کھولے جس میں حلال حرام کی بات تھی، لیکن بہت سارے لوگ چونکہ اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو پھر حلال حرام کا فرق مٹائے بغیر زندگیاں گزار دیتے ہیں. تو حق بات میں شرم نہیں. ہاں کنایتاً بات کیجئے، بحیا طریقہ ہونا چاہیے آپ کا بات کرنے کا، تاکہ دوسرے لوگ جو وہاں اس سے ان ریلیونٹ ہیں وہ انکمفرٹیبل محسوس نہ کریں. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں فرض ہیں، واجب ہیں، آپ ان کو چھوڑیں گے. مثلا غسل کا طریقہ، شرم کی وجہ سے ماں اپنی بیٹی کو غسل کا طریقہ نہیں بتاتی، بیماری کے دنوں سے پاک ہونے کا طریقہ نہیں بتاتی، زیر ناف بالوں کی صفائی نہیں بتاتی. نہیں مجھے شرم بڑی آتی ہے، تو بچی گناہ گار ہوگی نا، تو ایسی حیا اچھی نہیں ہوتی. اچھے طریقے سے بہترین انداز سے بات کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے اس سے متعلق؟ کلیئر ہے نا؟ یہ بتائیے کہ یہ چست پجامے حیا کے خلاف ہے کہ حیا والے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی قبیضے جس میں سے آدھا جسم جھل کے، یہ حیا والی بچیاں پہن دیں کہ بے حیا؟ اور جسم کو کھول کر دوپٹے سے بے نیاز اور جسم کا ایک ایک انگ پتلے دبلے کپڑوں میں دکھانا، یہ حیا ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، آپ کے اندر حیا آ جائے گی آپ کبھی اپنا آپ نہیں کھولیں گے، عورتوں میں بھی نہیں کھولیں گے. آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ باحیا ڈریس پہن سکتے ہیں، لیکن جسم نہیں کھول سکتے. اور یہ اندر ہے. بچے کا بھی ماں پیمپر چینج کرتی ہے نا، تو وہ ٹانگ کھینچ لیتا ہے، اس کو اس وقت بھی برا لگ رہا ہوتا ہے. سب کے بیچ میں نہ کرے. اور اس پہ ماؤں کو بھی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو پوٹی ٹرین کر رہے ہیں، پیمپر چینج کر رہے ہیں، کبھی دوسروں کے سامنے نہ کریں. ہم بچوں کو سب کے سامنے ننگا کر دیتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. بعض گھروں میں بچے برتنا پھرتے رہتے ہیں، तो इन सब चीज़ों से अंदर से हया मिट जाती है, इससे अपने आप को बचाना है इंशाअल्लाह ताला। अगला अमल देखिए, अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो जाना। हज़रत अबू सईद खुदरी से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काल रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीना वबी मोहम्मद रसूलन वजबत लहुल जन्ना। जिस शख्स ने कहा कि मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो गया, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। यह अबू दाऊद की रिवायत है 1529, सिलसिला तो सहीहा में 334। मतलब क्या है इससे? देखिए, इस पर एक लेक्चर हुआ था चंद माह पहले, रमज़ान से, रज़ा से रिजवान और रज़ाए इलाही। हम अपनी ज़िंदगी में हमारे साथ जो कुछ होता है, इस सब की बुनियाद पे अगर अल्लाह से खुश हैं तो ये रिज़ा है। अल्लाह ने जो शरीयत दी उस पे आप राज़ी हैं, पांच नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मियों के रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी रहे, बिजली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बिजली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा बंदा जो हर हाल में खुश होता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि सिर्फ ज़ुबान से रज़ाबंदी का इजहार करें और बस, बल्कि अपने अमल से इसका सबूत भी दें, फिर जन्नत में दाखला मुमकिन होगा।